नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट किताबी कीड़ा और मैं हूं आपका होस्ट संजय गोरा। मेरे नए श्रोताओं के लिए मैं दो बात कहना चाहूँगा इससे पहले कि हम कहानियाँ पढ़ें। पहले ये कि मेरा अंग्रेज़ी पॉडकास्ट लाइफ बुक पॉडकास्ट नाम से है, LIFEBOOK, और दूसरा मेरी लिखी किताबें अमेज़न फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं। तो इन दोनों में से आप कुछ भी ट्राई करना चाहें तो आपका स्वागत है। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया आप मुझे व्हाट्सएप पर या ईमेल पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8800477973 और मेरा ईमेल आईडी है gora.sk@gmail.com। ग्रीन, ऑरेंज, रेड, एप्पल, स्वीट, किंग @gmail.com। तो आइए पढ़ते हैं आज की कहानियाँ। एक बार एक बिलाव शक्तिहीन हो जाने के कारण गंगा जी के तट पर हाथ उठाकर खड़ा हो गया और सब प्राणियों को अपना विश्वास दिलाने के लिए मैं धर्माचरण कर रहा हूँ ऐसी घोषणा करने लगा। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर पक्षियों को उस पर विश्वास हो गया और वे उसका सम्मान करने लगे। उसने भी समझा कि मेरा कपट सफल हो गया। फिर बहुत दिनों बाद वहाँ चूहे भी आए और उस तपस्वी को देखकर सोचने लगे कि हमारे शत्रु बहुत हैं, इसलिए हमारा मामा बनकर यह बिलाव हम में से जो बूढ़े और बालक हैं उनकी रक्षा किया करें। तब उन सब ने उस विडाल के पास जाकर कहा, आप हमारे रक्षक और परम सुहृद हैं, अतः हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। चूहों के इस प्रकार कहने पर उन्हें भक्षण करने की नीयत से विडाल ने कहा, मैं तब भी करूँ और तुम सबकी रक्षा भी करूं, ये दोनों काम होने का तो मुझे कोई ढंग दिखाई नहीं देता। फिर भी तुम्हारा हित करने के लिए मुझे तुम्हारी बात भी अवश्य माननी चाहिए। तुम्हें भी नित्य प्रति मेरा एक काम करना होगा। मैं कठोर नियमों का पालन करते करते बहुत थक गया हूं। मुझे अपने में चलने फिरने की तनिक भी शक्ति दिखाई नहीं देती। अतः आज से मुझे तुम नित्य प्रति नदी के तीर तक पहुंचा दिया करो। चूहों ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात स्वीकार कर ली और सब बूढ़े बालक उसी को सौंप दिए। फिर तो वह पापी बिलाव उन चूहों को खा खा कर मोटा हो गया। इधर चूहों की संख्या दिनों दिन कम होने लगी। तब उन सब ने आपस में मिलकर कहा, क्यों जी, मामा तो रोज रोज फूलता जा रहा है और हम बहुत घट गए हैं, इसका क्या कारण है? तब उनमें कोलिक नाम का जो सबसे बूढ़ा चूहा था उसने कहा, मामा को धर्म की परवाह थोड़ी ही है, इसने तो ढोंग रचकर ही हमसे मेल जोल बढ़ा लिया है। इसके अंग बराबर पुष्ट होते जा रहे हैं और हम लोग घट रहे हैं। 7-8 दिन से डिंडिक चूहा भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोलिक की यह बात सुनकर सब चूहे भाग गए और वह दुष्ट बिलाव भी अपना सा मुंह लेकर चला गया, क्योंकि उसने तो केवल धर्माचरण का ढोंग रच रखा था। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि समाज में हम सतर्क होकर रहें। जिसने धर्म, कर्म, शास्त्र ज्ञान आदि का मिथ्या प्रदर्शन करते हुए अपने ही निहित स्वार्थों के साधक पाखंडियों के जाल में ना फंस सकें। शास्त्र का यह स्पष्ट आदेश है कि विडाल के जैसा कपटपूर्ण आचरण करने वालों को तनिक भी अवकाश नहीं देना चाहिए, नहीं तो सर्वनाश अवश्यम भावी है। दूसरी कहानी। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गोएं चराते थे। वहां एक बड़ा विस्तर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज इस रास्ते से ना जाइए, यहां एक सांप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूं। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ ना गए। इधर सांप फन उठाए झपटता चला आ रहा था, परंतु पास पहुंचने के पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैरों पर लौटने लगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है, ले मैं तुझे मंत्र देता हूं, इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसा वृत्ति ना रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवान मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते समय ब्रह्मचारी जी फिर आने का वचन दे गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, किंचुए की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बह चला, वह बेहोश पड़ा रहा, हिलडुल तक न सकता था। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया, यह सोचकर वे वहां से चले गए। जब बहुत रात बीती तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा करता ही ना था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। साल भर बाद ब्रह्मचारी फिर आए। आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा, वह तो मर गया है। ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास नहीं आया। वे जानते थे कि जो मंत्र वे दे गए हैं वह जब तक सिद्ध ना होगा तब तक उसकी देह छूट नहीं सकती। अतः उसे ढूंढते हुए वे अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। गुरुदेव की आवाज सुनकर सांप बिल से निकल आया और बड़े भक्तिभाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों कैसा है? उसने कहा, जी अच्छा हूं। ब्रह्मचारी, तो तू इतना दुबला क्यों हो गया? सांप ने कहा, महाराज जब से आप आज्ञा दे गए हैं तब से मैं हिंसा नहीं करता, फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूं, इसलिए शायद दुबला हो गया हूं। सत्व गुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह क्रोध ना कर सकता था, इसी से मार की बात भी वह भूल गया। ब्रह्मचारी जी ने कहा, सिर्फ ना खाने से ही किसी की यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, तू अच्छी तरह सोच दो। सांप को चरवाहों की मार याद आ गई। उसने कहा, हाँ महाराज अब याद आया, चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम थी नहीं, वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तो नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने को ही मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया? इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे वे अनिष्ट ना कर बैठें, पर उनमें विष ना डालना चाहिए, उनका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं अगली कहानी। बहुत पुरानी बात है, एक दिन राजा शौर्य ने मुख्य मार्ग के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखवा दिया और स्वयं एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा कि कोई उस पत्थर को हटाता है या नहीं। उस मार्ग से कई राजदरबारी और व्यापारी गुजरे, लेकिन पत्थर वहीं पड़ा रहा। कुछ लोग तो राज्य की मार्ग व्यवस्था को कोसने भी लगे, लेकिन किसी ने भी पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया। थोड़ी देर बाद वहां से एक किसान गुजरा, उसकी पीठ पर अनाज का बोरा लदा हुआ था। उसने पत्थर को देखकर सोचा, बीच राह में इतना भारी पत्थर रखा हुआ है, इससे टकराकर किसी को चोट लग जाएगी, मैं इसे हटा देता हूं। उसने अनाज का बोरा एक तरफ रखा और पत्थर हटाने का प्रयास करने लगा। काफी देर की कोशिश के बाद वह पत्थर हटाने में सफल रहा। जब किसान अपना बोरा उठाकर घूमा तो उसने देखा, जहां पत्थर पड़ा हुआ था वहां मोहरों से भरी थैली रखी है। उसने थैली नहीं उठाई और आगे जाने लगा। पीछे से आवाज आई, अरे भाई रुको। किसान ने मुड़कर देखा तो राजा शौर्य खड़ा था। राजा को देखकर किसान डर गया कि ना जाने उसने क्या अपराध कर दिया है। राजा ने किसान से कहा, डरो मत, वे पत्थर मैंने ही मार्ग में रखा है। मैं देखना चाहता था कि कितने लोग जीवन में आई बाधा को हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुख की बात है कि यहां से बहुत लोग गुजरे परंतु किसी ने भी इसे नहीं हटाया, सिर्फ तुमने यह काम किया है। जिस तरह यह पत्थर जीवन में आने वाली बाधा के समान था, उसी तरह यह इनाम इस बाधा को दूर करने से मिलने वाली उन्नति की तरह है। किसान ने खुशी खुशी मोहरों की थैली ले ली और राजा को धन्यवाद देकर वे अपनी राह चल दिया।